9 ख इतिहास के आधुनिक दार्शनिक जॉर्ज विलहेलम फ्रेडरिक हेगेल। हेगेल 1770 से 1831। जीवन वृत्त। आधुनिक इतिहास लेखकों में हेगेल को सर्वोच्च श्रेणी के विचारकों और दार्शनिकों में गिना जाता है। महान दार्शनिक हेगेल का जन्म जर्मनी के स्टटगार्ट में सन 1770 ईस्वी में हुआ था। वह एक सामान्य कर्मचारी का पुत्र था। उन्होंने अपनी शिक्षा जर्मनी के ट्यूबिंगेन विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। अपने अध्ययन काल में ही उन्हें रूसो और कांट की कृतियों से अधिक संपर्क हुआ और विशेषतः कांट के लेखों से अधिक प्रभावित रहे। वे वर्ने तथा फ्रैंकफर्ट में अध्यापन कार्य किए। सन 1801 ईस्वी में वे जेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। नेपोलियन के विजय के कारण जेना विश्वविद्यालय से हेगेल बवेरिया चले आए। 1818 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में फिक्टे के स्थान पर दर्शन के प्रोफेसर पद को सुशोभित किए और अपनी मृत्यु 1831 तक इस पद पर बने रहे। रचनाएं। हेगेल मुख्यतः दर्शन शास्त्र के व्याख्याता रहे। अधिकांशतः उन्होंने दर्शन तथा इतिहास दर्शन पर व्याख्यान दिए जो कालांतर में संग्रहित किए। उनकी प्रमुख कृतियों में दी फेमानोलॉजी ऑफ स्प्रिट, दी साइंस ऑफ लॉजिक, दी फिलॉसफी ऑफ राइट एंड लॉ तथा लेक्चर्स ऑन दी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। उनकी अंतिम कृति इतिहास दर्शन अत्यधिक महत्व की कृति इतिहास दर्शन के क्षेत्र में स्वीकार की गई। 1822 से 23 ईस्वी में इतिहास दर्शन पर व्याख्यान दिए जिसका अंग्रेजी अनुवाद जे सिबरी ने 1898 में न्यूयॉर्क से प्रकाशित किया। यह एक गंभीर मौलिक और युगांतकारी रचना है जिसमें इतिहास का दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन मात्र ही नहीं है वरन इतिहास को उठाकर दार्शनिक स्तर पर पहुंचाने का प्रयत्न है। इतिहास दर्शन। वाल्स के शब्दों में हेगेल को परिकल्पनात्मक दर्शन का संस्थापक कहा जा सकता है। उसने इतिहास दर्शन को नवीन स्वरूप प्रदान कर उसे नवीन दार्शनिक विचारों से अलंकृत किया। हेगेल के इतिहास दर्शन पर हर्डर और कांट का प्रभाव था। कांट का यह विचार था कि इतिहास दर्शन अपने से अवश्य संबद्ध होना चाहिए, व्यक्ति से नहीं, क्योंकि इतिहास दर्शन स्वयं में एक विस्तृत इकाई है। इसके अतिरिक्त हेगेल हर्डर से प्रभावित रहा कि इतिहास दर्शन राष्ट्र अथवा जनता के घटक से भी पूर्णतः संबद्ध है। यही विचार हेगेल के इतिहास दर्शन में परिलक्षित होता है। परंतु हेगेल का इतिहास दर्शन अपने आप में मौलिक एवं युगांतकारी है। हेगेल एक आदर्शवादी दार्शनिक था। उसके इतिहास दर्शन की मुख्य बातों की विवेचना एवं सर्वेक्षण निम्नलिखित शीर्षकों में ध्यातव्य है। इतिहास दर्शन की मौलिक अभिव्यक्ति। हेरदर ने 1784 ईस्वी में जिस नवीन इतिहास दर्शन का सूत्रपात किया उसकी चरम सीमा हेगेल के व्याख्यानों में मिलती है। जॉर्ज विलहेम फ्रीडरिक हेगेल को जर्मनी के प्रमुख दार्शनिकों और विचारकों में उच्च स्थान प्राप्त है। 1822-23 ईस्वी में उन्होंने इतिहास दर्शन पर सारगर्भित व्याख्यान दिए जो फिलोसोफी देयर गोसिस्ते इतिहास दर्शन के शीर्षक से प्रकाशित हुए। यह एक गंभीर मौलिक और युगांतकारिणी रचना है जिसमें इतिहास का दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन मात्र ही नहीं वरन इतिहास को उठाकर दार्शनिक स्तर तक पहुंचाने का प्रयत्न है। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन नहीं है वरन उनके भीतर छिपी हुई कार्य कारण प्रक्रिया की गवेषणा है। इतिहासकार केवल घटनाओं को निश्चित नहीं करता बल्कि उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों को हृदयंगम करता है, क्योंकि कार्य कारण की सूक्ष्म प्रक्रिया का जाल सार्वभौम और विश्वव्यापी है। अतः वास्तविक इतिहास मानवता का संपूर्ण प्रगति का वृतांत है और बर्बरता से सभ्यता तक के समस्त विकास का कथानक है। यहाँ कांत और हेर्डर की तरह हेगेल विश्व इतिहास का समर्थन करते हैं। इतिहास आत्मज्ञान के रूप में, हेगेल के अनुसार विश्व और उसका इतिहास आत्मज्ञान के रूप में है। विश्व इतिहास में स्थित सत्ता, ज्ञान और मूल्य जो बुद्धि विज्ञान और आदर्श से संबंध रखते हैं, वे एक ही आत्मज्ञान के अंतर्गत तीन भेद हैं। इसमें सत्ता विषय पक्ष है, ज्ञान विषयी पक्ष है और मूल तादात्म्य की पहचान है। सभी खंड ज्ञान उस एक अखंड और अनंत आत्मज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। यही कारण है कि सभी खंड ज्ञान में उनके अपूर्णता का अनुभव और उसे पूर्ण करने की प्रेरणा रहती है। यही प्रेरणा आत्मज्ञान की प्रेरणा है। ज्ञान हमेशा आत्मनिषेध द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। ज्ञान के अंतर्गत निषेध की यह प्रक्रिया ही तार्किक द्वंद्वात्मकता है। विश्व का इतिहास पूर्ण और अखंड आत्मज्ञान की दिशा में मनुष्य की विकास यात्रा का इतिहास है। हेगेल की मान्यता है कि इतिहास मानव आत्म के आत्मशोध के लिए की गई एक तीर्थ यात्रा है। इतिहास का मार्ग मानवीय विवेक द्वारा प्रशस्त होता रहता है और विश्व इतिहास विश्व का निर्णय है। यहाँ निर्णय का अर्थ एक जाति की दूसरी जाति पर विजय से है, जो विश्व चेतना का एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरित होने का प्रमाण है। इतिहास में मानव स्वतंत्रता के विकास की प्रवृत्ति। हेगेल के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्ति स्वतंत्रगामी होती है, अतः वह अधिक से अधिक स्वतंत्र रहने के लिए प्रयत्न करता है तथा उसी तरह के उपायों तथा कार्यों में प्रवृत्त होता है जिनके द्वारा वह अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। हेगेल की यह वैचारिकता इतिहास पर मुख्य रूप से आधारित है। विश्व इतिहास की मुख्य प्रवृत्ति मानव स्वतंत्रता का विकास है। मानव स्वतंत्रता का अर्थ नैतिक बुद्धि का प्रसार है, जो सामाजिक संबंधों का बाह्य रूप धारण करता है। ये सामाजिक संबंध राष्ट्र के रूप में परिणत होते हैं, अतः राष्ट्र नैतिक बुद्धि की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। इस दृष्टि से इतिहास दर्शन का लक्ष्य राष्ट्र के विकास क्रम की गवेषणा करना है, किंतु इतिहास का उद्देश्य भविष्य का अनुमान करना नहीं है, यह वर्तमान के अनुसंधान तक सीमित है। इस विषय में हेगेल कांत के विरुद्ध तथा सीलर के निकट पहुंच जाते हैं। मानव स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रता की चेतना है, अतः स्वतंत्रता का विकास उसकी चेतना का विकास है। यह एक मानसिक प्रक्रिया या बौद्धिक प्रसार है। विचार के जो तीन पक्ष और अस्तरवाद, प्रतिवाद और संवाद होते हैं, वे इस प्रक्रिया में विद्यमान रहते हैं। अतः ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वंद्वात्मक होती है। हेगेल का यह विचार फिस्ते के दर्शन से मिलता जुलता है। इतिहास का आध्यात्मिक रूप। इतिहास दर्शन केवल एक मानव प्रक्रिया ही नहीं है, वरन एक समस्त विश्व की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विश्व प्रकृति आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचकर आत्म चेतना में परिणत हो उठती है। हेगेल की यह धारणा सीलिक के तत्वज्ञान पर आधारित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हेगेल ने अपने इतिहास दर्शन के सभी तत्वों को अपने पूर्ववर्ती या समकालीन विचारों से ग्रहण किया, किंतु उन्होंने इन सबको ऐसी सुंदरता से समन्वित किया कि उनके सिद्धांत में एक विचित्र व्यापकता और सर्वांगीणता आ गई। प्रकृति एवं इतिहास। हेगेल के दर्शन की कुछ निजी विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि हेगेल प्रकृति और इतिहास की एकता और समानता को स्वीकार नहीं करते। उनके मतानुसार ये नितांत भिन्न प्रक्रियाएं हैं। प्रकृति की प्रक्रिया चक्रात्मक है, इसमें तथ्यों की पुनरावृत्ति बनी रहती है। सूर्योदय, वसंत, ज्वार आदि बारंबार आते जाते हैं, किंतु इनका स्वरूप एक सा ही बना रहता है। यह कहना गलत है कि निम्न शरीरियों में से उच्च शरीरियों का जन्म और विकास होता है। इस विषय में हम एक तार्किक और सामायिक क्रम को प्राकृतिक और शारीरिक क्रम समझ बैठते हैं। प्रकृति में कोई विकास नहीं होता, विभिन्न चक्रों की गति बनी रहती है, जिसकी संतति को देखकर क्रम का भ्रम हो जाता है। इसके विपरीत इतिहास चक्रवत नहीं घूमता बल्कि रेखावत चलता है। इसकी आवृत्तियों में नवीनता रहती है। यह एक युद्ध दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है। इतिहास में विचार और बुद्धि की प्रगति। हेगेल के मतानुसार इतिहास केवल विचारों के विकास से संबंध रखता है। घटनाएं विचारों की बाह्य अभिव्यक्तियां होती हैं, अतः उनका वर्णन करते समय इतिहासकार को उनके भीतर के विचारों को हृदयंगम करना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह घटनाओं के आंतरिक महत्व को नहीं समझ सकता और उनके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए फ्रेंच क्रांति की घटनाओं को समझने के लिए उसके पात्रों की विचारधाराओं को आत्मसात करना अनिवार्य है। अतः इतिहास मूल रूप से विचारों की संतति का वृतांत है। ऐतिहासिक प्रक्रिया का मुख्य यंत्र बुद्धि है। इतिहास में जो कुछ भी होता है मनुष्य की इच्छा से होता है। मनुष्य की इच्छा कर्म के रूप में उसके विचारों की अभिव्यक्ति होती है। प्रायः यह कहा जाता है कि मानव कर्म बुद्धि पर आश्रित नहीं होते। हेगेल इस विचार से सहमत नहीं है। विचार सदा परिस्थिति की अपेक्षा रखता है। किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्रिया को चिंतन कहते हैं। इस चिंतन के बिना किसी भी घटना का अस्तित्व संभव नहीं है। वास्तव में बुद्धि और भावना का विरोध नहीं है बल्कि मेल है। प्रत्येक कार्य में मानव प्रकृति के ये दोनों पक्ष सक्रिय रहते हैं। भावुकता के प्रत्येक क्षण में बुद्धि की क्रिया भी चलती रहती है। बहुधा बुद्धि भावना को अपना उपकरण बना लेती है। बुद्धि कोई अमूर्त अव्यक्त तत्व नहीं है और न इंद्रियातीत दैवी शक्ति है। यह मनुष्य के जीवन की समान मानसिक स्थिति है। इस प्रकार हेगेल ने मनुष्य का एक सजीव और सक्रिय रूप प्रस्तुत किया। यह धारणा 18वीं सदी के अमूर्त और स्थावर प्रकृति के सिद्धांत से बहुत अधिक समुन्नत थी। इसने इतिहास दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। इतिहास की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। चूंकि इतिहास विचारों का क्रम और बुद्धि की क्रिया है, अतः इसका स्वरूप मूलतः तार्किक है। ऐतिहासिक संक्रांतियां कालदंड पर सजाया हुआ तार्किक विकास है। इतिहास एक तर्क है जिसमें सामयिकता रहती है। तार्किक प्रक्रिया द्वंद्वात्मक और विरोधात्मक होने के कारण, अर्थात वाद प्रतिवाद और संवाद के क्रम पर आश्रित होने के फलस्वरूप इतिहास की प्रक्रिया भी इसी प्रकार द्वंद्वात्मक और विरोधात्मक होती है। इसमें एक स्थिति विरोधी स्थिति को उत्पन्न करती है और इन दोनों के संघर्ष से एक नवीन समन्वती स्थिति का जन्म होता है। इसे डायलेक्टिक कहते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि हेगेल के इतिहास दर्शन को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा जाता है। हेगेल के अनुसार सभ्यता का विकास सीधी रेखाओं में नहीं होता है, वरन उनके टेढ़े मेढ़े रास्तों के माध्यम से होता है। यह विश्व एक अस्थायी वस्तु नहीं वरन गतिशील प्रक्रिया है। इसीलिए इसका अध्ययन विकासवादी दृष्टि से किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में निम्न कोटि की वस्तुएं विकसित होकर उच्च कोटि की बन जाती हैं। विकसित होने के बाद कोई वस्तु पहले जैसा नहीं रहती वरन कुछ विकसित हो जाती है। यह प्रक्रिया द्वंद्वात्मक होती है। कोई भी वस्तु जो जन्म लेती है वह वाद है और उसकी विरोधी स्थिति प्रतिवाद है। वाद और प्रतिवाद दोनों में गुण दोष होते हैं। परिणामतः एक तीसरी चीज का प्रादुर्भाव होता है जो समन्वय के रूप में जाना जाता है। हेगेल की द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति का प्रयोजन एक ऐसा तार्किक उपकरण प्रदान करना था जिसके द्वारा इतिहास की आवश्यकता का ज्ञान हो जाए। हेगेल के अनुसार इतिहास में अविवेक का नहीं वरन विश्लेषणात्मक विवेक से ऊंचे विवेक के एक नए रूप का समावेश होता है। विश्व इतिहास की अवधारणा। हेगेल यह मानता है कि बुद्धि विश्व का शासन करती है, अतः विश्व का इतिहास एक बुद्धि संगत प्रक्रिया है। दर्शन में यह विश्वास कि बुद्धि ही परम तत्व है और विश्व उसकी अभिव्यक्ति एवं तर्क प्रतिपाद्य धारणा है। हेगेल के विश्व इतिहास इतिहास की अवधारणा स्पष्ट ही उसकी विश्व की दार्शनिक व्याख्या पर आधारित है। विश्व इतिहास की मूल प्रवृत्ति मानव स्वतंत्रता का विकास है। मानव स्वतंत्रता का अर्थ नैतिक बुद्धि का प्रसार है, चरम सत्य विश्वात्मा है जिसके विशेष गुण विवेक और स्वतंत्र होते हैं। मानव मन विवेक के द्वारा ऐतिहासिक ढंग से स्वतंत्र की अनुभूति तथा उसका विकास करता है। इस प्रकार विश्वात्मा की अनुभूति ऐतिहासिक प्रक्रिया में होती है जिसके द्वारा विश्व प्रकृति आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचकर विश्व आत्मचेतना में परिणत हो उठती है। कांट से हेगेल ने यह ग्रहण किया कि इतिहास दर्शन का संबंध व्यक्तिगत आदमी से न होकर बृहत्तर आयामी घटक से है। हर्डर से यह विचार ग्रहण किया कि राष्ट्र भी उस बृहत्तर घटक का ही एक घटक है। हेगेल का विचार यह है कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशेष बौद्धिक विशिष्टता होती है जो उसके प्रत्येक सिद्धांतों, परंपराओं, यहाँ तक कि काल और विज्ञान में भी प्रतिबिंबित होती है। परंतु अपनी विशिष्टताओं के साथ प्रत्येक राष्ट्र विश्व इतिहास की प्रक्रिया में विशिष्ट योगदान देता है। आलोचना। हेगेल का इतिहास दर्शन तत्कालिक विचारों का सुंदर समन्वय है। इसके विषय में यदि कोई आपत्ति हो सकती है तो यह कि इसमें मानसिक तत्वों को अत्यधिक प्रधानता दी गई है। आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार वस्तु जगत को विचार जगत का प्रतिबिंब मात्र मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन दर्शन में राष्ट्र को प्रमुखता मिलने के कारण इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया है। वर्तमान इतिहास दर्शन में संस्कृति को प्रधानता दी जाती है। इस दृष्टि से हेगेल का दर्शन एक पक्षीय प्रतीत होता है। हेगेल का इतिहास दर्शन में योगदान। हेगेल ने सर्वप्रथम इतिहास की घटनाओं में एक क्रमिक विकास तथा उसका एक युक्ति संगत अर्थ देखा। जीसी पांडे के शब्दों में इतिहास की घटनाओं में एक युक्ति संगत अर्थ देखने के जितने प्रयास हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हेगेल का है। हेगेल इतिहास प्रवाह में परिवर्तन मात्र न देखकर एक क्रमिक विकास देखता है। जो लोग अब हेगेल से एकमत नहीं हैं वे भी इससे प्रायः सहमत नहीं है कि इतिहास की घटनाओं में बढ़ने की विकसित होने की प्रक्रिया सारभूत होती है। हेगेल के अनुसार यह विकास एक क्रम से होता है और वह क्रम द्वंद्वात्मक है। विकास क्रम की द्वंद्वात्मकता उसके युक्ति संगत होने का ही परिणाम है क्योंकि ज्ञान का विकास सहज रूप से एक द्वंद्वात्मक क्रम का अनुसरण करता है। अतः हेगेल द्वारा यह मानना कि इतिहास की प्रक्रिया एक तर्कसंगत द्वंद्वात्मकता के क्रम का अनुसरण करते हुए विकास की प्रक्रिया है, इतिहास के परिकल्पनात्मक दर्शन की दृष्टि से हेगेल का महत्वपूर्ण योगदान है। हेगेल की विश्वात्मा की अवधारणा से इतिहास दर्शन में नियति एवं तर्क का समन्वय प्रकट हुआ है। हेगेल का इतिहास दर्शन में योगदान का एक महत्वपूर्ण पक्ष था स्वाधीनता हेतु क्रांति की दिशा में विकास। हर्जेन ने हेगेल के सिद्धांत को क्रांति का बीजगणित बतलाया है। ईएच कार के अनुसार हेगेल का यह मूल्यांकन अत्यंत समचीनी था। समाप्त।